एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
संगीत हल्का होकर पृष्ठभूमि में चला जाता है।
ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे महाकाव्य की बात कर रहे हैं जो पश्चिमी साहित्य का कह सकते हैं कि एक आधार स्तंभ है, होमर की ओडिसी।
हाँ, और सोचिए, ये कहानी लगभग 3000 साल पुरानी है। 8वीं सदी ईसा पूर्व प्राचीन ग्रीस में रची गई।
कमाल है। और इसके रचयिता होमर, उनके बारे में आज भी कितना कम पता है हमें। कोई एक कवि थे या ये बस एक नाम है पूरी परंपरा का?
ये रहस्य तो है, पर इलियड जो ट्रॉय युद्ध पर थी, उसके बाद ये ओडिसी, ये युद्ध की नहीं बल्कि घर लौटने की, नॉस्टॉस जिसे कहते हैं, उसकी कहानी है।
हाँ, नॉस्टॉस, घर वापसी और पहचान की भी, और मुश्किलों में अक्ल मतलब मेटिस के इस्तेमाल की।
बिल्कुल, और ये याद रखना जरूरी है कि ये तब बनी जब कहानियां गाई जाती थीं, लिखी नहीं जाती थीं, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आज हम इसी महायात्रा को थोड़ा गहराई से समझेंगे, पूरी कहानी, किरदारों के सफर और वो गहरे विषय जो इसमें छुपे हैं।
हाँ, और होमर का अंदाज भी तो देखिए, कहानी शुरू होती है इन मीडियास रेस, मतलब एकदम बीच से।
हाँ, ये दिलचस्प है, मतलब कोई शुरू से भूमि का नहीं।
बिल्कुल नहीं। सोचिए, ट्रॉय का युद्ध खत्म हुए 10 साल हो गए हैं, लगभग सारे ग्रीक हीरो लौट आए हैं घर,
सिवाय के इथाका के राजा ओडिसिस, चालाक ओडिसिस।
हाँ वही, वो 10 साल से समंदर में भटक रहा है। कभी देवताओं का गुस्सा झेल रहा है, खासकर पोसाइडन का, कभी किसी देवी के द्वीप पर फंसा है, कभी राक्षसों से लड़ रहा है।
और पीछे उसके राजे इथाका में क्या हो रहा है?
वहां तो हालत खराब है, उसके महल में पूरी तरह अराजकता है, 100 से ज्यादा अमीरजादे जिन्हें स्यूटर्स कहा गया है।
पाणी ग्रहण प्रार्थी, बड़ा अजीब सा शब्द है उनके लिए।
हाँ, मतलब वो शादी करना चाहते हैं रानी से, वो ओडिसियस को मरा हुआ मान चुके हैं, तो बस महल पर कब्जा जमाए हैं, उसकी दौलत उड़ा रहे हैं, नौकरों के साथ बदतमीजी।
और रानी पेनेलोपी, ओडिसियस की पत्नी,
वो बेचारी वफादार है, इंतजार कर रही है, पर ये सूटर्स उस पर लगातार दबाव बना रहे हैं कि उनमें से किसी एक को चुन लें ताकि राजगद्दी मिल जाए।
और उनका बेटा टेलेमेकस।
टेलेमेकस अब जवान हो गया है, पर उसने पिता को देखा नहीं कभी, और इन सूटर्स के सामने बिल्कुल बेबस है।
तो कहानी की शुरुआत में ये पात्र हैं हमारे सामने, एक धैर्यवान पेनेलोपी, उलझा हुआ टेलेमेकस, वो घमंडी सूटर्स,
और देवी एथेना जो ओडिसियस की संरक्षक हैं, और खुद ओडिसियस, वो बेचारा कैलिप्सो के द्वीप पर कैद है, घर की याद में रो रहा है।
तो यही हमें कहानी का मुख्य संघर्ष दिखता है। एक तरफ ओडिसियस का बाहरी संघर्ष, समुंदर, राक्षस, देवता,
बिल्कुल,
और दूसरी तरफ इथाका में अंदरूनी लड़ाई, सूटर्स से अपना राज्य, अपना सम्मान बचाना।
और सवाल यह है कि क्या एक अकेला आदमी 20 साल बाद सिर्फ अपनी बुद्धि और सहन शक्ति से सब कुछ वापस पा सकता है, अपनी पहचान, अपना परिवार, दुनिया में अपनी जगह? हाँ, और यहाँ घर का मतलब सिर्फ एक इमारत नहीं है, घर मतलब पहचान, मकसद, विरासत।
हम आगे कुछ खास विषयों पर बात करेंगे, जैसे आपने कहा नॉस्टॉस, घर वापसी का वो गहरा मतलब, फिर ज़ेनिया, मेहमान नवाजी का नियम जिसका स्यूटर्स मजाक उड़ा रहे हैं,
और हाँ, मेटिस यानी बुद्धि का बल, जो बाहुबल से ज्यादा जरूरी साबित होता है।
तो कहानी आगे कैसे बढ़ती है? शुरुआत टेलेमेकस से होती है ना?
हाँ बिल्कुल, पहला हिस्सा लगभग 4 किताबें, उसे टेलेमाकी भी कहते हैं। ये टेलेमाकस के बारे में है। देवी एथेना आती हैं ओडिसियस के एक पुराने दोस्त मेंटिस का भेष धरकर।
अच्छा।
और वो टेलेमाकस को जगाती हैं, उसे हिम्मत देती हैं कि वो अपने पिता की खोज में निकले।
एक तरह से उसे बड़ा होने के लिए प्रेरित करती हैं।
बिल्कुल, वो पहली बार सभा बुलाता है, स्यूटर्स की बुराई करता है, हालांकि वो उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन एथीना की मदद से वो रात में चुपके से निकल जाता है, पाइलोस जाता है, राजा नेस्टर से मिलता है, फिर स्पार्टा, राजा मेनेलास और रानी हेलेन से।
ये वही लोग हैं जो ट्रॉय में ओडिसियस के साथ थे।
हाँ, वो उसे पिता की कहानियां सुनाते हैं और ये भी बताते हैं कि ओडिसियस जिंदा है पर कहीं फंसा हुआ है। इस यात्रा से टेलेमेकस बहुत बदल जाता है, वो एक झिझकने वाले लड़के से एक आत्मविश्वासी युवक बन जाता है।
तो पिता की खोज में निकला और खुद को पा लिया एक तरह से। अच्छा, फिर कहानी ओडिसियस पे आती है।
हाँ, इसके बाद फोकस ओडिसियस पर जाता है, किताब 5 से 8 तक। ऊपर ओलंपस पर देवताओं की सभा होती है।
एथेना फिर से ज्यूस से कहती होंगी।
हाँ, एथेना की जिद पर ज्यूस मान जाते हैं, वो हर्मीस को भेजते हैं कैलिप्सो के पास,
वही देवी जिसने ओडिसियस को 7 साल से रोक रखा था अमर बनाने का लालच देकर।
जी हाँ, पर अब ज्यूस का हुक्म था तो कैलिप्सो को मानना पड़ा। उसने ओडिसियस को एक बेड़ा बनाने में मदद की।
ओडिसियस तो खुश हो गया होगा।
बहुत। वो घर की तरफ चला, लेकिन तभी समुंदर में पोसाइडन ने उसे देख लिया।
ओहो, पोसाइडन क्यों नाराज था?
वो आगे पता चलेगा, साइक्लॉप्स वाले किस्से से जुड़ा है। खैर, पोसाइडन ने भयानक तूफान खड़ा किया, बेड़ा तोड़ दिया।
बेचारा ओडिसियस।
हाँ, वो कई दिन तैरता रहा, मरते मरते बचा। आखिर में स्कीरिया द्वीप पहुंचा, जहां फिशन लोग रहते थे।
और वहां उसे राजकुमारी नौसिका मिली।
बिल्कुल, नौसिका ने दया दिखाई, उसे महल ले गई। राजा एल्किनस और रानी एरेटे ने उसका बहुत अच्छा स्वागत किया। ये ज़ीनिया का बेहतरीन उदाहरण है,
सूटर्स के व्यवहार के एकदम उलट।
हाँ, और यही फिशन दरबार में राजा के पूछने पर ओडिसियस अपनी पहचान बताता है और अपनी 10 साल की कहानी सुनाता है।
वो 10 साल जो उसने ट्रॉय से निकलने के बाद भटकाओं में गुजारे, ये तो ओडिसी का सबसे प्रसिद्ध हिस्सा है, किताब 9 से 12 तक।
हाँ जी, बिल्कुल। ये फ्लैशबैक है और इसमें गजब के किस्से हैं, रोमांचक भी, डरावने भी।
जैसे
शुरुआत किससे होती है?
सबसे पहले आता है साइक्लॉप्स पॉलीफेमस का किस्सा, एक आंख वाला आदमखोर दैत्य।
ओहो, ओडिसियस और उसके कुछ साथी उसकी गुफा में फंस जाते हैं। वो उनके साथियों को खाने लगता है।
बाप रे।
तब ओडिसियस अपनी चालाकी दिखाता है। वो पॉलीफेमस को तेज शराब पिलाकर बेहोश कर देता है, फिर एक बड़ी सी नुकीली लकड़ी से उसकी अकेली आंख फोड़ देता है।
और उसने अपना नाम क्या बताया था?
उसने कहा था, मेरा नाम उतीस है, जिसका मतलब होता है कोई नहीं। तो जब बाकी साइक्लॉप्स मदद के लिए आए और पूछा कि क्या हुआ, पॉलीफेमस चिल्लाया, कोई नहीं मुझे मार रहा है।
क्या दिमाग लगाया।
हाँ, तो सब वापस चले गए। फिर वो लोग भेड़ों के पेट के नीचे छुपकर गुफा से भाग निकले।
लेकिन यहां ओडिसियस से एक गलती हो जाती है ना?
हाँ, भागते हुए जहाज से वो जोश में या कहिए घमंड में आकर चिल्लाता है, अगर कोई पूछे तुम्हें किसने अंधा किया, तो कहना इथाका के राजा ओडिसियस ने।
और यही गड़बड़ हो गई, उसका अभिमान ह्यूब्रिस उसकी बुद्धि पर भारी पड़ गया।
बिल्कुल, क्योंकि पॉलीफेमस का पिता था पोसाइडन, समंदर का देवता। उसने अपने बेटे का बदला लेने की कसम खाई, और बस तभी से ओडिसियस की घर वापसी इतनी मुश्किल हो गई।
ये बड़ा सबक है, बुद्धि के साथ विनम्रता जरूरी है। अच्छा, इसके बाद?
इसके बाद वो पहुंचते हैं सर्क जादूगरनी के द्वीप एयोरियाई पर। वो दिखने में तो सुंदर है पर खतरनाक। उसने ओडिसियस के कुछ साथियों को दावत पर बुलाया और जादू से सुअर बना दिया।
हे भगवान!
ओडिसियस उन्हें बचाने गया। रास्ते में हर्मीस देवता मिले, उन्होंने एक जड़ी बूटी दी मौली नाम की, जिससे सर्क का जादू उस पर बेअसर रहा।
अच्छा।
हाँ, उसने सर्क को हराया और मजबूर किया कि वो उसके आदमियों को वापस इंसान बनाए। फिर वो करीब 1 साल वहीं सर्क के साथ रहा।
1 साल? घर की याद नहीं आई?
आई, बिल्कुल आई। इसीलिए सर्क ने उसे आगे का रास्ता बताया, पर एक शर्त पर, उसे पहले मृतकों की दुनिया यानी अंडरवर्ल्ड जाकर अंधे भविष्यवक्ता टायरेसियस की आत्मा से सलाह लेनी होगी।
अंडरवर्ल्ड जाना, ये तो बहुत भयानक सफर रहा होगा।
बहुत। वहां वो अपनी मां की आत्मा से मिलता है, जो उसके जाने के बाद दुख से मर गई थी। वो ट्रॉय में मारे गए अपने साथी अकिलीस और एगमेमनॉन से भी बात करता है।
और टायरेसियस क्या बताता है?
टायरेसियस उसे आगे के खतरों से आगाह करता है, खासकर सूर्य देवता हेलियोस के मवेशियों के बारे में, और इथाका की हालत भी बताता है स्यूटर्स के बारे में। ये जानकारी बहुत अहम थी।
इससे घर लौटने का उसका इरादा और मजबूत हुआ होगा।
हाँ, अब आगे का सफर और भी मुश्किल था। पहले आई साइरंस,
जिनका गाना सुनकर नाविक खिंचा चले आते थे।
हाँ, और चट्टानों से टकराकर मर जाते थे। ओडिसियस ने सर्क्स की सलाह मानी। उसने अपने साथियों के कान मोम से बंद कर दिए और खुद को जहाज के मस्तूल से कसकर बंधवा लिया,
ताकि गाना सुन भी सके और बच भी जाए। वाह।
हाँ, इसके बाद आया सबसे कठिन रास्ता। एक तरफ फिला नाम की 6 सिर वाली दैत्य थी, जो गुफा में रहती थी और हर गुजरते जहाज से 6 नाविकों को झपट लेती थी।
6?
और दूसरी तरफ थी करिब्डिस, एक विशाल भंवर जो दिन में 3 बार पानी पीता और उगलता था, पूरे जहाज को निगल सकता था।
तो ओडिसियस ने क्या चुना?
उसे चुनना पड़ा। भंवर में जाने का मतलब था सब मारे जाते। सिला के रास्ते जाने का मतलब था 6 साथियों का मरना तय था। उसने सिला वाला रास्ता चुना।
ये तो लीडर के लिए बहुत मुश्किल फैसला रहा होगा, अपने साथियों को मरते देखना।
हाँ, ये नेतृत्व की एक दुखद सच्चाई दिखाता है। कभी कभी नुकसान को कम करना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। उसने अपने 6 साथी खो दिए।
उफ, और इसके बाद?
आखिर में वो पहुंचे थ्रिनीशिया, सूर्य देवता हेलियोस के द्वीप पर, जहां उनके पवित्र गाय बैल चढ़ते थे। टायरेसियस और सर्क दोनों ने सख्त मना किया था कि इन्हें छूना भी मत।
लेकिन थके हारे भूखे नाविक
हाँ वही हुआ, ओडिसियस सो रहा था। उसके साथियों ने खासकर यूरिलोकस के भड़काने पर भूख के मारे कुछ मवेशियों को मार डाला और पकाकर खा लिया।
ये तो सीधी सीधी चेतावनी की अनदेखी थी, देवताओं का अपमान।
बिल्कुल, और इसकी सजा तुरंत मिली। जैसे ही उनका जहाज वापस समंदर में गया, ज्यूस में आसमान से बिजली गिराई, जहाज के टुकड़े टुकड़े हो गए,
सब मारे गए,
सब सिवाय ओडिसियस के। वो अकेला एक टूटे तख्ते के सहारे 9 दिन तक बहता रहा, और अंत में कहां पहुंचा?
कैलिप्सो के द्वीप पर, जहां से कहानी फ्लैशबैक में जाने से पहले थी।
एकदम सही। तो ये थी उसकी 10 साल की भटकने की कहानी जो उसने फिशियन लोगों को सुनाई।
क्या कहानी है, फिशियन लोग तो सुन के हैरान रह गए होंगे।
हाँ, बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने उसे ढेर सारे तोहफे दिए और अपने तेज चलने वाले जहाज में सुलाकर रातों रात इथाका पहुंचा दिया। ये किताब 13 से 16 का हिस्सा है।
तो आखिरकार घर वापसी, पर क्या सब कुछ आसान था?
नहीं, बिल्कुल नहीं। जब वो अपने द्वीप के किनारे जागा तो पहले पहचान ही नहीं पाया। देवी एथेना ने धुंध फैला रखी थी।
अच्छा, क्यों?
ताकि वो एकदम से महल न पहुंच जाए। एथेना प्रकट हुई, उसे सच्चाई बताई और फिर उसे एक बूढ़े फटेहाल भिखारी का रूप दे दिया।
भिखारी का रूप? क्यों भला?
ताकि वो चुपके से इथाका में घूम सके, देख सके कि कौन वफादार है, कौन दुश्मन बन गया है, बिना पहचाने गए।
ये तो बड़ा नाटकीय मोड़ है।
हाँ, वो सबसे पहले अपने एक पुराने वफादार सुअर चराने वाले यूमेयस के पास गया। यूमेयस ने उसे पहचाना नहीं, पर भिखारी समझकर भी उसे खाना दिया, रहने की जगह दी। यह फिर से ज़ेनिया का अच्छा उदाहरण है। तभी टेलेमेकस भी स्पार्टा से लौट आया। वो भी सीधा यूमेयस की झोपड़ी में पहुंचा
और वहीं बाप बेटे मिले।
हाँ, एथेना के इशारे पर ओडिसियस ने अपना असली रूप दिखाया। 20 साल बाद वो पल, आंसू, मिलना, बहुत भावुक है।
यकीनन, फिर उन्होंने मिलकर सूटर्स से निपटने की योजना बनाई होगी।
हाँ, एक खतरनाक योजना।
फिर ओडिसियस भिखारी के भेष में अपने ही महल में जाता है। ये किताब 17 से 20 में है शायद।
जी हाँ, यह हिस्सा बहुत तनाव और भावनाओं से भरा है। सोचिए, राजा अपने ही घर में भिखारी बनकर घूम रहा है,
स्यूटर्स का सामना कर रहा है, उनका घमंड, उनका अपमान सह रहा है।
हाँ, उनका नेता एंटनस तो उस पर स्टूल फेंक कर मारता है। वो सब चुपचाप सहता है, अपनी पहचान छुपाए रखता है। वो देख रहा है कि कौन से नौकर बिगड़ गए हैं, कौन अब भी वफादार हैं।
और उसका पुराना कुत्ता आर्गोस,
आह वो सीन। आर्गोस बूढ़ा, बीमार, कचरे के ढेर पर पड़ा है, किसी को उसकी परवाह नहीं। पर जैसे ही ओडिसियस भिखारी के भेष में पास से गुजरता है, 20 साल बाद भी वो अपने मालिक को पहचान लेता है।
सच में?
हाँ, वो बस कमजोरी से अपनी पूंछ हिला पाता है, कान खड़े करता है और फिर वहीं दम तोड़ देता है, जैसे बस मालिक को आखिरी बार देखने का इंतजार कर रहा था।
उफ, ये तो बहुत मार्मिक है।
बहुत। फिर रात में जब पेनेलोपी की बूढ़ी दाई यूरिक्लिया उस भिखारी के पैर धो रही होती है,
वो निशान देख लेती है
जांग पर, जो बचपन में सुअर के शिकार के वक्त लगा था।
बिल्कुल,
वो पहचान जाती है। ओडिसियस फौरन उसे इशारा करके चुप रहने को कहता है, कसम देता है।
राज बरकरार रहता है। और पेनेलोपी, क्या उसे कुछ शक होता है इस भिखारी पर?
वो इस भिखारी से एक अजीब सा खिंचाव महसूस करती है। वो उससे अपने पति ओडिसियस के बारे में देर तक बात करती है, और फिर शायद एथेना से प्रेरित होकर वो एक घोषणा करती है।
वही धनुष वाली प्रतियोगिता?
हाँ, वो कहती है कि अगले दिन वो ओडिसियस का विशाल धनुष लाएगी, जो स्यूटर उस पर डोरी चढ़ाकर तीर चलाएगा और उसे 12 कुल्हाड़ियों के फालों में बने छेदों से पार निकाल देगा। वो उसी से शादी कर लेगी।
ये पेनेलोपी की भी एक चाल थी, है ना? वो जानती थी कि ये काम ओडिसियस के सिवा कोई नहीं कर सकता।
शायद, या शायद वो थक चुकी थी, पर हाँ, ये मंच तैयार कर रहा था क्लाइमैक्स के लिए।
तो अगले दिन प्रतियोगिता शुरू होती है, किताब 21 और 22।
हाँ जी, माहौल में बहुत तनाव है। स्यूटर्स एक एक करके कोशिश करते हैं। वो सब बड़े ताकतवर थे, पर कोई उस धनुष को जरा सा झुका भी नहीं पाता,
जाहिर है।
फिर वो भिखारी ओडिसियस बड़ी नरमी से पूछता है, क्या मैं भी कोशिश कर सकता हूँ?
स्यूटर्स तो हंसे होंगे उस पर,
खूब मजाक उड़ाया। पर टेलेमेकस, जो प्लान में शामिल था, जोर देकर कहता है कि भिखारी को मौका दिया जाए।
और फिर?
और फिर ओडिसियस धनुष उठाता है, इतनी आसानी से उस पर डोरी चढ़ाता है जैसे कोई संगीतकार अपने वाद्य यंत्र पर तार चढ़ा रहा हो।
वाह।
फिर वो तीर साधता है और तीर सनसनाता हुआ उन 12 कुल्हाड़ियों के छेदों से निकल जाता है।
सबके होश उड़ गए होंगे।
बिल्कुल, हॉल में सन्नाटा। और अगले ही पल ओडिसियस अपने फटे चीथड़े उतार फेंकता है, अपनी असली पहचान जाहिर करता है।
और फिर शुरू होता है बदला।
हाँ, टेलीमेकस, यूमेयस और एक और वफादार ग्वाला फिलोटियस हथियार लेकर उसके साथ आ खड़े होते हैं। उन्होंने पहले ही सारे दरवाजे बंद कर दिए थे और हथियार छुपा दिए थे।
स्यूटर्स तो फंस गए
बुरी तरह। ओडिशस का पहला तीर लगता है सबसे बदतमीज शूटर एंटिनस को गले में और फिर मार काट शुरू हो जाती है।
देवी एथेना भी मदद करती हैं।
हाँ, वो मेंटर के रूप में प्रकट होती हैं, फिर अपने ढाल दिखाती हैं। ओडिसियस और उसके साथी एक एक करके सारे स्यूटर्स को मार डालते हैं। पूरा हॉल खून से सन जाता है।
20 साल का गुस्सा फूट पड़ता है।
हाँ, फिर उन नौकरानियों को भी सजा दी जाती है जिन्होंने स्यूटर्स का साथ दिया था और पेनेलोपी से गद्दारी की थी।
तो इस तरह अराजकता का अंत होता है, व्यवस्था वापस आती है। पर क्या पेनेलोपी अब मान लेती है कि ये ओडिसियस ही है?
नहीं, इतनी आसानी से नहीं। ये किताब 23-24 की बात है। यूरिक्लिया दौड़कर पेनेलोपी को खबर देती है, पर पेनेलोपी को यकीन नहीं होता।
20 साल बहुत लंबा अरसा होता है, धोखा भी हो सकता है।
बिल्कुल, वो सोचती है कहीं कोई देवता ओडिसियस का रूप धर कर तो नहीं आ गया। वो नीचे आती है, ओडिसियस को देखती है, पर कुछ कहती नहीं, बस घूरती रहती है। टेलेमैकस झुंझला जाता है कि माँ इतनी पत्थर दिल क्यों हो रही है।
फिर पेनेलोपी कैसे परखती है?
वो एक आखिरी परीक्षा लेती है। वो जानबूझकर नौकरानी से कहती है, जाओ ओडिसियस का बिस्तर बाहर दालान में लगा दो।
उनका शादी का बिस्तर।
हाँ, ये सुनकर ओडिसियस एकदम चौंक जाता है। थोड़ा गुस्से में कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? उस बिस्तर को कौन हिला सकता है? वो तो मैंने खुद अपने हाथों से एक बड़े जिंदा जैतून के पेड़ के तने को काट कर बनाया था, जो कमरे में अपनी जड़ों पर खड़ा है। उसे कोई नहीं हिला सकता।
और ये रहस्य सिर्फ वो दोनों जानते थे?
सिर्फ वो दोनों। जैसे ही ओडिसियस ये बताता है, पेनेलोपी के सारे शक, सारे डर दूर हो जाते हैं। वो रो पड़ती है, दौड़कर उसके गले लग जाती है।
आखिरकार 20 साल बाद।
हाँ, वो असली पुनर्मिलन था। फिर अगले दिन ओडिसियस अपने बूढ़े पिता लायटिस से मिलने जाता है, जो दुख के मारे खेतों में अकेले रह रहे थे। वहां भी पहचान का एक मार्मिक क्षण है।
लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई।
हाँ, सूटर्स के घर वाले।
हाँ, वो बदला लेने के लिए सेना लेकर आते हैं।
एक और लड़ाई छिड़ने को होती है, लेकिन तभी देवी एथिना फिर से हस्तक्षेप करती हैं।
मेंटर के रूप में।
हाँ, और फिर देवी के रूप में भी। ज्यूस भी ऊपर से संकेत देते हैं। एथेना दोनों पक्षों में शांति करवाती हैं। वो इथाका में अमन, न्याय और ओडिसियस का राज पुनर्स्थापित करती हैं।
और इस तरह महाकाव्य का अंत होता है। ओडिसियस राजा, पति, पिता, बेटा, हर रूप में वापस अपनी जगह पा लेता है।
बिल्कुल।
इस पूरी कहानी में इतने सारे विषय हैं जिन पर हमने बात की। पहचान का सवाल, कि असली पहचान क्या है? क्या वो जो दुनिया देखती है या वो जो अंदर है? ओडिसियस को अपनी बाहरी पहचान खोनी पड़ी, तब जाकर वो अंदर से और मजबूत हुआ।
हाँ, और व्यवस्था बनाम अराजकता। सूटर्स पूरी तरह से अव्यवस्था और लालच के प्रतीक थे। ओडिसियस का लौटना न्याय की जीत है।
और वो भूलने का प्रलोभन भी। लोटस खाने वाले, सर्क, कैलिप्सो, ये सब उसे आराम का, भूल जाने का रास्ता दिखा रहे थे।
और उसने हमेशा याद रखने का, वफादारी का, घर वापसी का मुश्किल रास्ता चुना।
और की शैली भी अद्भुत है। वो इन मीडियास रेस से शुरू करना, फ्लैशबैक का इस्तेमाल, वो होमेरिक एपिथेट्स, तेज आंखों वाली एथेना, शराब जैसे गहरे रंग का समंदर।
हाँ, और वो होमेरिक उपमाएं, किसी बड़ी वीर घटना की तुलना रोजमर्रा की चीज से करना, जैसे स्यूटर्स की लाशों की तुलना जाल से निकली मछलियों से, ये कहानी को बहुत जीवंत बना देता है।
प्रतीक भी बहुत गहरे हैं। समंदर है जीवन की यात्रा, धनुष है ओडिसियस की अद्वितीय पहचान और अधिकार, और वो जैतून के पेड़ का बिस्तर,
वो पेनेलोपी के साथ उसके अटूट स्थिर रिश्ते का प्रतीक है।
भावनात्मक रूप से ये कहानी बहुत गहरी छाप छोड़ती है। घर की वो तड़प, बिछड़ने का दर्द, ओडिसियस का अकेलापन और उसकी हिम्मत, पेनेलोपी का धीरज, टेलेमैकस का सफर।
हाँ, ये सब पाठक महसूस करता है। पुनर्मिलन के दृश्य तो साहित्य के सबसे यादगार पलों में से हैं। ये कहानी इंसान की सहन शक्ति, उसकी वफादारी और प्यार की मिसाल है।
और ये सवाल छोड़ जाती है कि घर का असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ एक जगह या लोग या खुद अपनी पहचान के प्रति सच्चा रहना?
ओडिसियस की यात्रा दिखाती है कि वीरता सिर्फ बाहुबल में नहीं, बल्कि बुद्धि, धैर्य और मुश्किल हालात में सही रास्ता चुनने में है।
बिल्कुल। तो ओडिसी हमें सिखाती है कि घर वापसी सिर्फ किसी भौगोलिक स्थान पर पहुंचना भर नहीं है,
बल्कि अपनी खोई हुई पहचान, अपने रिश्तों और अपने जीवन के अर्थ को फिर से पाने की एक अंदरूनी यात्रा भी है।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।
समापन संगीत।